नमस्कार। चुनाव खत्म हुए, पांच राज्यों में जो नतीजे सामने आए हैं उन पर चर्चा हो रही है, अखबारें रंगी हुई हैं, स्टूडियो में टेलीविजन के जितने भी स्टूडियोज हैं वहां पर लोग अपनी चीखो चिल्लाहट जारी रखे हुए हैं। हम बात करेंगे 2019 की। चुनाव के जो भी परिणाम आए हैं इस दफे, उसके कारण क्या रहे हैं, जीत के कारण क्या रहे हैं, हार के क्या रहे हैं, अच्छे अच्छे पंडित लोग जो हैं वो आपको बता ही रहे हैं। हम 2019 के चुनाव की बात करेंगे, जो आम चुनाव हैं, जो ज्यादा दूर अब नहीं है। अप्रैल के पहले हफ्ते में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ये लागू हो जाता है, फिर आप कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। और 26 मई को नई सरकार बननी है, तो अप्रैल से लेकर मई तक 2 महीने हैं जिसमें चुनाव भी होने हैं। अब आप अप्रैल से पहले लगाएं तो 3 महीने बचते हैं और कुछ दिन बचते हैं, आज 12 तारीख तो हो गई। तो मौजूदा सरकार जो है प्रधान सेवक की, उसके पास सिर्फ 3.5 महीने हैं। अब 3.5 महीने में वो ऐसा क्या करेंगे कि 2019 के चुनाव के मैदान में उतर पाए दिखाने के लिए और वोट मांगने के लिए और जीतने के लिए। बहुत से लोगों को डर है कि दंगे होंगे, हिंसा वगैरह होने की उम्मीद वो जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं। हम 10 चीजें आपको ऐसी बताएंगे जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि हम उन्हें पहचान चुके हैं, लोग भी उन्हें पहचान गए हैं। पिछले 5 साल में लोगों ने देख लिया कि वो क्या है, उनके बस का क्या है। मैं 10 बातें आपको बताता हूं। ये मेरे दोस्त है प्रशांत टंडन, उनके सहयोग से ये 10 बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को गौ रक्षा के नाम पर जितने भी हिंसा करने वाले लोग हैं, मॉब लिंचर्स हैं, उनको घर भेजना है वापस। घर वापसी उनकी करनी है। क्या वो करेंगे, मुझे शक है, क्योंकि वही कार्यकर्ता हैं, वही बूथ मैनेज करेंगे, वही लोगों में दहशत फैलाते हैं। दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी को करनी है, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एड्रेस कर दो। 5 साल होने को आ रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं करी। इतना डरते क्यों हैं आप? पढ़े लिखे तमीजदार पत्रकार जिन्हें जानकारी है, उनके सवालों का जवाब तो दीजिए। आप जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप चुने हुए हैं। आप कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, ना ही आप बादशाह हैं, शहंशाह हैं। आप चुने हुए सेवक हैं जनता के, तो जनता के सवालों का जवाब आपको देना होगा। सिर्फ रैली करने से काम नहीं चलता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ऐसे पत्रकारों को बुलाइए जो आपकी गोदी में ना बैठे हुए हों, जो सरकारी ना हो, जो दरबारी ना हो, जो जानकार हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात, आपके जो ट्रोल्स हैं, जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एकदम टूटकर पीछे पड़ जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, लोगों को बदनाम करना, चाहे वो ट्रोल्स हों, चाहे वो कुछ और लोग हों, सिर्फ कीचड़ फेंकने का काम करते हैं जो, उनको आपको रोकना होगा। क्या आप रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपकी सेना है। सबसे ज्यादा जो हमारा विमर्श है, पब्लिक डिस्कोर्स है, उसका स्तर अगर गटर तक लाया गया है तो वो आपके बीजेपी आईटी सेल के जो ट्रोल्स हैं उन्होंने किया है ये काम, लेकिन आप उनको नहीं रोकेंगे। चौथी बात, बोलिए कम, काम ज्यादा करिए। लोग आपके बोलने से बोर हो चुके हैं, उकता गए हैं, उनका कोई मनोरंजन भी नहीं होता, लेकिन आप काम ज्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपने पिछले 4.5 साल में जो कुछ करके दिखाया है उसके नतीजे सामने हैं, और अब तो सिर्फ 3.5 महीने रह गए हैं। आगे चलते हैं। पांचवी बात, वो भी आपके बस का नहीं है लेकिन आपको वो करना चाहिए, ब्रिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। जो अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतर चुकी है उसे पटरी पर वापस लाइए। हालांकि समय रह ही नहीं गया आपके पास, आप नहीं ला सकते वापस। एक कदम आपने ऐसा और उठा दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा गवर्नर बना दिया जो हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, जो अर्थशास्त्री नहीं है। अब ये सेक्शन 7 लागू करने के लिए है, ताकि जो रिजर्व हैं रिजर्व बैंक के उनको भी लिया जा सके। इस पर भी हम बात करेंगे दूसरे हिस्से में। आप ये नहीं कर सकते, आप इस वक्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला सकते। आप छठी बात यह है कि रिस्टोर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। हमारे जो इदारे हैं, संस्थान हैं, उनकी जो स्वायत्तता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी है, काम करने की आजादी है, आपने अपने लोग वहां बिठा दिए हैं जिन्होंने सबको जकड़ रखा है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो आईसीएचआर हो, चाहे वो और दूसरे संस्थान हो। उनकी जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, आजादी है, वो बहाल कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज पर कंट्रोल करना, सत्ता की कोई भी शक्ल हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी किस्म हो, उसको कंट्रोल करना आपके पूरी सोच में है कि सब कुछ अपने पास कंट्रोल करके रखो। उसके बाद आपको एक और करना है कि आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं उनसे कहिए कि बैंकों से और कर्जे ना लें, पहले वाले वापस करें, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनसे चंदा भी मिलता है, वो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहे हैं, हमने काफी अरसे से देखा है, बैंकों का हाल खराब है, तो आप उनको ये कहिए या ये फैसला कर दीजिए कि बैंक उनको कर्जे ना दें, जो डूब चुके हैं उन कर्जों को कैसे वापस लाना है उस पर ध्यान दीजिए आप, लेकिन आप ये भी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। उसके बाद आठवीं बात है कि धर्म के नाम पर समाज को बांटना बंद कीजिए, द अदराइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपने जो दरार डाली है आपकी पार्टी ने, आपके और नेताओं ने, पोलराइजेशन, वोट लेने के लिए, अंग्रेज ये काम 200 साल तक नहीं कर पाए थे, आपने 4-4.5 साल में इस काम को इतनी तेजी से अंजाम दिया है कि आज के दिन जो मुसलमान है इस देश का, वो खुद को अलग सा महसूस करता है, उसको अलग कर दिया है, जैसे डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं, किसी के वोट देने की ताकत को ले लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको वोट ही हिंदू के नाम पर लेना है, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर। नवी बात है, जरा मुश्किल है, योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर भेज दीजिए, वो जहां जहां जाते हैं, जो जो बोलते हैं, उससे समाज में दरारें बढ़ती हैं, उससे समाज में वैमनस्य, हिंदी का शब्द है, हाँ, वो बढ़ता है, लोगों में प्यार नहीं रहता, मेलजोल नहीं रहता, तो योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर भेज दीजिए, उन्हें वहीं रहने दीजिए, आप करेंगे नहीं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। और दसवीं बात, कभी भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव मत लड़िए, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिंदा कर दिया है, खड़ा कर दिया है उनका नाम ले लेकर, अब जितनी चर्चा पिछले साल 1.5 साल में नेहरू साहब की हो रही है, उतनी पिछले 20 साल में भी नहीं हुई थी, ये सबक सीखिए आप, लेकिन आप नहीं सीखेंगे क्योंकि आपके पास कुछ करके दिखाने को है ही नहीं, सिवाय कांग्रेस को गाली देने के, वो भी नेहरू गांधी परिवार को, कांग्रेस की विधवा पेंशन खा गई, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये जो हमने कहा है आपको 10 बातें, ये आप ना करें 2019 के लिए, तो आप ही के लिए बेहतर है, लेकिन आप ही करेंगे क्योंकि आपको आता ही यही है। अब हम बात करेंगे शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया गया है, ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने नोटबंदी में, डीमोनेटाइजेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और ये खुद भी बहुत बढ़ चढ़कर बोलते थे उन दिनों टेलीविजन पर कि बहुत सही कदम है, और हम बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, देखेंगे कोई गलत कर रहा हो तो उसको पकड़ेंगे वगैरह वगैरह। डीमोनेटाइजेशन की जो नाकामी रही है उससे बिल्कुल बचकर ये निकल गए, फाइनेंस कमीशन के सदस्य बने, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया है। इन्होंने एमए हिस्ट्री में किया है, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, बीए और एमए हिस्ट्री में किया है दिल्ली से, सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, उसके बाद एक एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स किया है आईआईएम बेंगलोर से। अब रिजर्व बैंक और सरकार के जो आमना सामना हुआ था, यह अभी हाल ही की बात है, चुनाव से पहले हुआ था, रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसकी अपनी स्वायत्तता है, अपनी आजादी है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो सरकार से हुक्म नहीं लेता, लेकिन एक सेक्शन 7 है जिसके मुताबिक सरकार बीच बीच में कभी कभी कह सकती है, हिदायत दे सकती है रिजर्व बैंक को। अब रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास रिजर्व्स होते हैं, बचत होती है, जनता का पैसा होता है, बहुत बड़ी तादाद में होता है, ताकि इमरजेंसीज में काम आ सके। सेक्शन 7 ये होता है जिसमें सरकार अगर चाहे तो उस पैसे को मांग सकती है, उसका एक हिस्सा है ये, अभी तक हुआ नहीं था इतिहास में हमारे, कभी भी नहीं हुआ। ये बहुत ही एक्सट्रीम मेजर माना जाता है, चाहे वो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, और तो और 1991 में जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, रिजर्व बैंक के जो रिजर्व्स हैं इसको हाथ नहीं लगाया था हमने, ये हमेशा वैसे पड़े रहते हैं। सरकार ये रिजर्व चाहती है ताकि बैंकों को दिए जा सकें और बैंक उद्योगपतियों को दें ताकि वो कर्जे लेकर अपने अपने बिजनेसेस जो उनके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पुराने कर्जे वापस नहीं कर पाए, चला सके। इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और रोष है, रिजर्व बैंक और सरकार आमने सामने आए। विरलाचार्य डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक, उन्होंने इस बात की जानकारी दी, पहला संकेत वहां से आया कि बैंकिंग सिस्टम के साथ सरकार को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उर्जित पटेल ने मना कर दिया वो रिजर्व देने से और इस्तीफा देना पड़ा उनको। अब एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को, एक आईएएस को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है एक तरह से। मैं आपको बताता हूँ जो एनपीएस हैं हमारे वो कितने हैं, और हमारा ही पैसा फिर से दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेजिंग बैड मनी विद गुड मनी, कि जो पैसा अच्छा पैसा है बैंक में जमा है, रिजर्व बैंक में है, किसी ऐसे दिन के लिए कि जरूरत पड़ सकती है उसकी, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कर्जे वापस आ जाए ताकि उनके काम दोबारा खड़े कर सके। दिस इज चेजिंग बैड मनी विद गुड मनी। एनपीएस का मैं आपको बताता हूं, एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कुछ ऐसे कर्जे दिए गए हैं, ऐसी कंपनियों को दिए गए हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बैठ चुकी हैं, जिन पर केस भी चल रहे हैं, वो कर्जे देने की हालत में, कर्ज वापस करने की हालत में नहीं है। हमारे चालाक वित्त मंत्री जो बोलते बहुत अच्छा हैं, हालांकि वो भी लॉ से हैं, वकील हैं, बहुत बेहतरीन वकील रहे हैं, तो वो एक वकील हमारा वित्त मंत्री है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर है, अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो आपके सामने है, नोटबंदी जैसा कदम उठाया गया है, एनपीएस का सवाल सुनिए। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे वापस करने हैं, जो हमारे वित्त मंत्री के मुताबिक माफ नहीं किए गए हैं, बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं, दे हैव नॉट बीन वेव्ड ऑफ, उनका ये कहना था, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बैड डेट्स, माने जो पैसा डूब गया है वो माफ नहीं किया है लेकिन डूब गया है। ये लफ्जों की ही हेरा फेरी है और कुछ नहीं, वो पैसा डूब गया, उन्हीं को ही दोबारा पैसा दिए जाने के लिए सेक्शन 7 लागू करके सरकार ने ये गवर्नर बदला है ताकि रिजर्व बैंक का पैसा लिया जा सके। अब मैं आपको बताता हूं, सन 2015 में, 31 मार्च 2015 में हमारे जो एनपीएस थे, जो डूबे हुए पैसे थे, डूबे हुए कर्जे, वो थे 3,23,464 करोड़ रुपए। ये हमारे पैसे हैं, आपके पैसे हैं ये, ठीक है, ये डूब चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिए, जिसमें अंबानी भी शामिल हैं, अडानी भी शामिल हैं, रुइया ब्रदर्स शामिल हैं, भूषण स्टील शामिल हैं, ये जिंदल वाले शामिल हैं, ये सारे पैसे डूब चुके हैं, अब ये वापस आए इसलिए इनको और पैसा दिया जाए, ये खेल है इस वक्त। तो मैं आपको बता रहा था कि 3,23,264 करोड़ रुपया था मार्च 31, 2015 को डूबा हुआ कर्जा जो था, वो 31 मार्च 2018 इस साल बढ़कर 10,35,00,528 करोड़ हो गया। हमारे पास, रिजर्व बैंक के पास जो कुल है पैसा जो है अपने रिजर्व में, वो है सिर्फ 9,060 लाख करोड़ रुपए, जो इन एनपीए से भी कम है। उसमें से सरकार चाहती है कि कुछ पैसा, माने 3.6 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार चाहती है ताकि इनको दिया जा सके, उद्योगपतियों को, वो दोबारा से खड़े हो सके। और यही 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 दिक्कत है और यही बात थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार आमने सामने आए। अब क्या ये पैसा दिया जाना चाहिए? ये हमारा पैसा है, जो डूबा हुआ पैसा है, बजाय इसके कि उसको रिकवर किया जाए, शक्तिकांत दास को लाया ही इसीलिए गया है कि रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है, रिजर्व पैसा है, जो तब भी इस्तेमाल नहीं किया था जब सोना गिरवी रखा गया था, तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे मुझे याद है, क्या इस वक्त यही पैसा इन्हीं लोगों को दिया जाए जिन्होंने पहले का पैसा डुबो रखा है? जरा सोचिए। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।